اسی طرح ایک اور بڑی پیاری روایت ہے اسی حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتیوں میں دو لوگ ایسے ہیں، ایک رات کے وقت بیدار ہو کر اپنے آپ کو وضو کی مشقت میں ڈالتا ہے، یعنی سوتے ہوئے اٹھ کر پانی کو ہاتھ لگانا اور اپنی نیند کو بھگانے کے لیے منہ ہاتھ دھونا، وضو کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، نفس پہ گراں ہوتا ہے۔ فرمایا اس وقت اس پر کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، شیطان اس پر گرہیں لگاتا رہتا ہے تاکہ وہ اٹھ نہ سکے، چنانچہ وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، مسح کرتا ہے تو ایک اور کھل جاتی ہے، پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے، یعنی فرشتے، کہ میرے اس بندے کو دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ خوشی سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے اس بندے کو، یعنی مقربین سے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو جس نے اپنے نفس کے ساتھ سخت محنت کی، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا اسے ملے گا۔ کیا پتہ چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ چلیے اپنے لیے لکھیے، کیا کبھی میں نے البصیر کو اس طریقے سے خوش ہونے کا موقع دیا جب راتوں کو اٹھ اٹھ کے بستروں سے نکل کر ٹھنڈے پانیوں سے وضو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر دے، ہم تو گرم پانیوں میں وضو نہ کر سکیں، گرم گھر، باتھ روم ابلتے ہوئے، باہر -5 -10 اور اندر +20 کر لیں، 25 کر لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، اس میں توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں تہجد گزار بنا، دعا کیجیے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے کہ جن کو راتوں کو اٹھتا دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا خوبصورت اللہ کی رحمت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے بیٹھنے والے، مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کے لیے، اور اللہ کے لیے راتوں کو اٹھنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت جگہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج آپ مسجد میں نہیں جا پاتے، کوئی بات نہیں، آپ پکنک پہ جاتے ہیں، کھلی جگہوں پہ جاتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ نہیں جا پاتے، حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری روایت، آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا پتہ چلا، کبھی پکنک پہ گئے، اور یہ حدیث مجھے ہمیشہ تب یاد آتی ہے جب کسی ہم ڈے ٹور پہ جائیں، تو الحمدللہ آپ کے سر کی عادت ہے کہ وہ وہاں بھی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے پہاڑ پہ یا جہاں بھی جائیں تو پہلے کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی نماز ہوتی ہے، وہ نماز جو پتھروں پہ ہے، کہیں چٹائی پاس ہوتی ہے، کوئی اپنی جیکٹس لے کر بیٹھا ہے، کیونکہ ٹرپس بہت سارے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، تو اس میں لوگوں نے بھی یہ بہت چیز انجوائے کی۔ بلکہ جب ہم سمر کے ٹرپس میں گئے اور باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی پکنکس میں ایسے نہیں کیا، بلکہ ہمیں تو گلٹی رہتا ہے کہ گھومنے جائیں، سیروں میں جائیں تو نماز قضا ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کپڑے ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے وضو نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن جب سب ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، اور وہ نماز کیا، وہ مسجد کی نماز میں مزہ آتا ہے، جو وہاں کھلی فضاؤں میں مزہ آتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو کہیں بھی لے کے جائیے، کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کو رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ البصیر تو آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ تو آپ کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، تبھی تو پھر آپ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسلاف میں سے ہم دیکھیں کہ وہ اس نام کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اس میں آپ کو ابن قیم رحمہ اللہ کا قصیدہ سنایا، جس پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک انسان رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتا، جدھر جہاں جیسے جو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے نا، تو وہ اپنے ہر اچھے کام میں اللہ کو سامنے پاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا اشارہ دیا کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے اپنی کشتی بنائیں، یہ سورۃ ہود کی آیت کہ جس میں کہا کہ بیا یونینا، آپ بنائیے کشتی، لوگ مذاق کریں گے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کام کیجیے۔ لوگوں نے مذاق کیا، او بابا جی، او اچھا کہاں کشتی چلاؤ گے، پہاڑوں میں، میدانوں میں؟ ان کو نہیں پتا تھا اتنا بڑا عذاب آ رہا ہے، اتنی بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیا یونینا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کے خاص کاموں کو خاص توجہ دیتے ہیں، अपनी निगाहों में, अपनी कस्टडी में काम लेते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनके दिलों को सुझा देते हैं। सूरत तगाबुन में भी आता है, वह मैं यो मैं बिल्ला यकदी कल्बा, जो अल्लाह पे ईमान लाता है अल्लाह उसको खुद रास्ते दिखाता है। खुश नसीब है वो लोग जिन पर अल्लाह की रहमत की नज़र पड़ती है और जिनको देख कर अल्लाह खुश होते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह हमारे सारे कामों पर अपनी नज़र रख ले, अल्लाह हमारे सारे काम अपनी कस्टडी में ले ले, हमें कुछ नहीं आता करना, हमसे नहीं सही हो रहा, हमें बस गुजारा करना आता है मालिक, तो अपनी रहमत से हमारे कामों को अपनी निगरानी में ले, जैसे तूने नूह की कश्ती को लिया। और इसी तरह से आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के इस नाम को देखते जाएंगे, आपका दिल करेगा कि मैं कामों को सजाऊं संवारूं और फिर अल्लाह उसको देखे। जैसे अपने किसी को कोई गिफ्ट देना होता है, कितना सजाते हैं, आज तो खाना भी सजता है, स्वीडिश सजती, कहीं सैलड सजते, डिस्प्ले कल्चर है, कपड़े सजते, जूती सजती, गाड़ी सजती, मसहरी सजती, क्या क्या नहीं सजता, अल बसीर को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी को संवारिए। बहुत ज्यादा अपने बच्चों को जाहिर परस्त ना बनाइए। फिर दुआ में देखिएगा अल बसीर लफ्ज़ का और इस सिफत का अल्लाह ताला का क्या जिक्र है, और ख़ास तौर पर फिर अजकार में, तो सुबह फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के बीच की दुआ। अल्लाह के नबी सुन्नतें घर पे पढ़ते थे और मस्जिद की तरफ जाते हुए रास्ते में जो दुआ करते थे, बुखारी की रिवायत 6316 में हमें मिलती है और मेरा एक गुमान है कि आप सबको आती है। अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा वफी लिसानी नूरा वफी समई नूरा वफी बसरी नूरा वमिन फौकी नूरा वमिन तहती नूरा वईं यमीनी नूरा वन शिमाली नूरा वमिन अमामी नूरा वमिन खल्फी नूरा वजल्फी नफसी नूरा। ए अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा फरमा दे, और मेरी जुबान में भी, मेरे कानों में भी, और मेरी निगाह में भी। इधर रुकिए, जब आपकी निगाहों में नूर आ जाएगा ना, तो आप अल बसीर की मर्जी के बन जाएंगे। मेरे ऊपर भी नूर हो, मेरे नीचे भी, मेरे दाएं भी और मेरे बाएं भी, राइट और लेफ्ट, और मेरे सामने भी और मेरे पीछे भी, और मेरे नफ्स में भी नूर पैदा कर दे। तो कल से जब सुबह ये दुआ मांगे, तो उस वक्त अपनी आंखों को सोचे, अब आपके इसका वजीफा बना ले। देखिए लोग कहते हैं आंखों की कमजोरी के लिए, एक दफा एक बच्ची यंग सी थी, तो उसने मुझे एक पेपर दिखाया, जी किसी ने मुझे दिया है कि मैं ये वजीफ़ा करूं तो मेरी शादी वहां हो जाएगी जहां होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। खैर वो कबज़ना इलैही कब्ज़न यसीरा अली आए थी। और एक और साहब ने दिखाया कि जी ये मेरी नज़र कमज़ोर है, तो किसी ने ये वजीफ़ा दिया है, इतनी दफ़ा बैठ के पढ़ेंगे तो ये तो वो। आपको पता कि वो क्या आयत थी? क़्यामत का दिन होगा, वह बसरु का यौमैज़िन हदीद का लफ्ज़ है उसमें, कि उस दिन तुम्हारी नज़र तेज़ हो जाएगी। यकीन करें वहाँ नज़र के चुंधियाने की बात है, यानी अंधेपन की बात है, कि उस दिन की हैरानियाँ और परेशानियाँ, और कोई उनको दे रहा है कि आप इसको नज़र तेज़ करने के लिए करें। आखिर हमने कुरान से यही लेना था, तो क्या ज़रूरत थी अल्लाह के नबी को 23 साल तक इतनी मशक्क़त में पढ़ने की? याद रखिएगा कुरान सिर्फ इसके लिए नहीं आया, आपको मुझे इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। फिर एक और बड़ी खूबसूरत दुआ है जिसमें आप इस नाम का असर देखेंगे, ये क्या है? सलाम फेरने से पहले की दुआ। निसाई की रिवायत है 1306 और मुस्नद अहमद में जिल्द 4 में 264 पे। दुआ आपको याद करनी चाहिए। असल में ये दुआ पता क्या है? अल बसीर को देखने को दिल करता है। लिखिए, जब वो अल बसीर है, वो हर लम्हे हमें देखता है, माँ के पेट में भी देखता था, रहम में भी देख रहा था, हम पैदा हुए तो उसने देखा, मौत तक कब्र में जाने तक उसने देखा, तो क्या हमें शौक नहीं होना चाहिए उसको देखने का? हजरत मूसा ने तो ख्वाहिश की थी ना कि रब्बी अरिनी फंजुर इलैया, अल्लाह मैं तेरी तरफ देखूं, तो आपका मेरा शौक होगा? जी आइए दुआ सीखते हैं। ये है वो दुआ जो आपके मेरे दिल में अल्लाह की मुलाकात का शौक भर देगी। और वजू हुई यौम इज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा में शामिल कर दे मैं अल्लाह। फ्रेश चेहरे वाले जितने आला दर्जे के काम करेंगे कल अल्लाह की निगाहों में होंगे, और अल्लाह का दीदार वो दीदार है कि जन्नत की हर नेमत उसके बाद हेच होगी। और दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब व कुदरतिकल खल्क याहयिनी मा अलिमतल हयाता खैरल्ली व तवफ्फनी इज़ा अलिमतल वफ़ात खैरल्ली। اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع، واسألك الرضا بعد القضاء، واسألك برد العيش بعد الموت. آمين. کہیے، بڑی پیاری دعا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے دوسرا. واسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. عربی لفظوں نے تو شاید کچھ اثر دل پہ کیا ہو، اردو میں سنیے. اے اللہ، اے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے اس وقت موت دینا جب تیرے علم کے مطابق میرے لیے موت بہتر ہو. اے اللہ، بے شک میں حاضر اور غائب، یعنی حاضر اور غائب دونوں حالتوں میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتی ہوں. سوچئے، تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، کیا تیرا ڈر ہو میرے اندر؟ خشیت الہی پیدا کیجیے. اس آنکھ سے روئیے، اس آنکھ کا حق ہے، البصیروں نے کا حق ہے کہ آپ اس نام کو سن کر کبھی اپنی آنکھوں کو رلائیے، آنسو بہائیں، کبھی اللہ کے خوف سے، کبھی اللہ سے ملنے کی امید میں، کبھی اللہ کے پیار میں. کتنوں کے لیے روتے ہیں، آئے کیسے دیکھیں، ایک نظر دیکھنی ہے. کئی گلوکاروں اداکاروں کے لیے لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، اور البصیر جس نے آپ کو اتنی پیاری آنکھیں دے دی، آپ ان کو دیکھنے کی دعا بھی کیجیے. اور میں تجھ سے خوشنودی اور ناراضگی، یعنی میں خوش ہوں یا میں ناراض ہوں، دونوں حالتوں میں کلمہ حق کہنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں. کہ بعض انسان غصے میں اور ناراضگی میں غلط باتیں کہتا ہے، تو آپ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. میں تجھ سے مالداری اور تنگ دستی میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور تجھ سے تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں، اور تیری ملاقات کے شوق کا جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو. اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے. آخری تشہد میں یہ دعا مانگا کریں، سلام سے پہلے، اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کریں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ البصیر کون ہستی خوبصورت سی کہ جو اڑتی فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی دیکھتا ہے. سورۃ ملک کی آیت 16 ہے غالباً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبض ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. سورۃ ملک کی آیت 19 ہے. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک وہ ہر چیز کو، انہ بکل شیء بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اس کی شان ہے کہ تمام مخلوق کی حرکات کو خوب اچھی طرح دیکھ سکتا ہے. پرندوں کو دیکھتا ہے، ان کے رنگ کو دیکھتا ہے، ان کی اڑانوں کی پرواز کو، ان کی اونچائی کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں میں. اور ایک وقت میں ایک چیز کو دیکھنے میں اس کو دوسری چیز سے کوئی غافل نہیں ہوتا. 10 چیزیں اکٹھی دکھا دیں، جیسے السمیع ساری آوازیں اکٹھی سنتا ہے نا، تو البصیر ہر چیز ساتھ ہی دیکھتا ہے، بولتے چلتے اڑتے پرندے. کیا ممکن ہے یہ؟ ہمارا تو رخ دوسری طرف ہو جائے تو ہمیں تب کندھوں سے پیچھے کوئی چیز نہ دکھے. تو ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے اس نام کو اپنے دل پہ محسوس کریں. اور البصیر سے متعلق الموعظۃ الحسنہ، اور وہ کیا ہے؟ دلوں میں نرمی لائیے. یاد رکھیے گا، جب تک آپ کا میرا دل نرم نہیں ہوگا، اللہ کے دیکھنے کا احساس نہیں ہوگا، اور جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، تب تک ہم سدھریں گے نہیں. پھر بیوی کا ڈر کیا، اور پکڑے جانے کا ڈر کیا، اور ماں باپ کا خوف کیا، اور دوستوں میں بدنامی کیا، اور گلی محلے اور ان ساری چیزوں میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک چور تھا، اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں بٹھایا. قاری صاحب روز درس کے بعد بچوں کو تھوڑا سا سبق بھی دے دیتے تھے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس نام البصیر کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ ذات خوب دیکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظریں ہیں بندے کے اوپر، ہم اسے کبھی چھپ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو دیکھ رہے ہیں. ہوا کیا کہ ایک دن یہ چور اپنے بیٹے کو لے کے سفر پر تھا. रास्ते में अंगूरों के एक बाग में से गुजरे तो दिल ललचाया कि कुछ अंगूर ले लूं। बेटे को एक साइड पर खड़ा करके कहने लगा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, इधर उधर झांकना, कोई आए तो मुझे बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा। वो अंगूर तोड़ने के लिए गया, अभी बेल के पास था कि बच्चे ने शोर मचा दिया, या अभी अहदुई ये रोना, अब्बा जान हमें कोई देख रहा है, अब्बा जान हमें कोई देख रहा है। बाप डर गया, फौरन भाग के वापस आए, देखा ना इधर कोई ना उधर, कहा कौन देख रहा है, कहा अब्बा जान वो देख रहा है, जल बसीर है, कोई बंदा ना भी देखे तो बंदों का रब तो देखता है। बाप पर इतना असर हुआ कि हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। और इसी तरह आपने दूध में पानी मिलाने वाला वाक़या तो कई बार सुना। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत है, रातों को गश्त किया करते थे, लोगों के हालात जानते थे कि मेरे मुल्क में लोग कैसे रहते हैं। अच्छे लीडर्स अपने आम लोगों के साथ रहते हैं, उनके मसाइल को भी जानते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। एक घर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आ रही है जो अपनी बेटी से बातें कर रही है। हज़रत उमर ने जब गौर किया, पता चला बुढ़िया उस लड़की से पूछ रही थी क्या बकरी ने दूध दे दिया। उसने कहा जी दे दिया। कहा कितना दिया? कहेंगे आज फिर बहुत थोड़ा सा दूध दिया है। कहने लगी मांगने वाले तो पूरा मांगेंगे, क्या करूँ इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। तो अभी बच्ची ने कहा माँ तुम्हें नहीं पता अमीरुल मोमिनीन ने तो पानी मिलाने से मना किया है। कहेंगी वो अमीरुल मोमिनीन हमें कौन सा देख रहे हैं। माँ ने कहा कुछ नहीं मिला दो। लड़की बोली अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो अमीरुल मोमिनीन का परवरदिगार तो देख रहा है। हज़रत उमर बैठ सुन रहे हैं ये सारी बातें। अब जरा सोची क्या उनकी सवाब दी थी, कोई जज्बाती और गुस्से वाला होता वही नौक करके उस औरत को पकड़ के जेल में ले जाता। ना ना ना, घर आए, मुकालमा सुना, घर आ गए, सुबह उस बुढ़िया को भी बुलवाया और बच्ची को भी। और इसके बाद फिर आपने उस लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, बहू के तौर पे उसको पसंद किया। कि एक लड़की जो रात की तन्हाइयों में अल बसीर के देखने को जानती है वो गलत काम कैसे करेगी। और उस औरत का क्या नसीब के खलीफे वक्त के बेटे का रिश्ता, उसने रिश्ता किया, शादी हुई और यही बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज की नानी बनी। ये है वो ईमान जिसकी तासीर अल्लाह औलाद और नस्लों में चला देते हैं। तो याद रखिए दूध में पानी हो या कोई हेरा फेरी हो वो देख रहा है। इसी तरह एक और वाक़या है, एक आलिम थे तो वो कहीं जा रहे थे, तवील बात है खुलासा सुना देती हूँ। तो एक जगह से जाते हुए दूसरी जगह स्टेशन पर गए तो सामान था इनके पास जो ज़्यादा था, तो खैर खिड़की पर गए कि पैसे दे के तो सामान बुक करा लूँ। वहाँ जब गए तो वो शख्स इनको पहचान गया, तो उसने इनकी बड़ी इज्जत की, इन्होंने कहा ये मेरा सामान बुक करके मुझसे पैसे ले लो। उसने कहा नहीं 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 हम आपसे क्यों पैसे लेंगे, छोड़िए छोड़िए, आपको सामान बुक कराने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी गार्ड को कह देता हूँ, वो आपको सामान की वजह से कुछ नहीं कहेगा। तो इस अल्लाह के बंदे ने कहा ये गार्ड मेरे साथ कहाँ तक जाएगा? तो रेलवे अफसर ने कहा कि गाजियाबाद तक। उन्हें कहा अच्छा गाजियाबाद के बाद क्या होगा? उसने कहा ये गार्ड फिर दूसरे गार्ड से भी कह देगा। कहा अच्छा वो दूसरा गार्ड कहाँ तक जाएगा? कहा वो कानपुर तक आपके साथ जाएगा। कहा अच्छा कानपुर के बाद क्या होगा? कहने लगा कानपुर के बाद क्या होना है, वहां तो आपका सफर खत्म हो जाएगा। इस पे फिर वो आलिम दीन बोले नहीं मेरा सफर तो बहुत लंबा है, कानपुर पर ख़त्म नहीं होगा, इस लंबे सफ़र की इंतहा तो आखिरत में होगी। ये बताइए कि जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि अपना सामान तुम किराया दिए बगैर क्यों और किस तरह ले गए तो ये गार्ड साहिबान मेरी क्या मदद करेंगे? अल्लाह अकबर, आगे क्या होगा जी? फिर उन्होंने उसको बताया कि देखो ये रेल, ये गाड़ी आपकी या गार्ड की मलकियत नहीं है, ये गवर्नमेंट का माल है, अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, आप फिर जिससे पैसे लें ना लें तो फिर तो ये गलत बात होगा, ये तो चोरी होगी, तो मुझे अल्लाह के सामने अपने इस गुनाह का जवाब देना पड़ेगा और आपकी ये रियायत मुझे बड़ी महंगी पड़ेगी, आप प्लीज़ मुझसे किराया लीजिए। और कहते हैं कि वो जो वर्कर था वो मुँह देखता रह गया और कहने लगा आप सच कहते हैं, हकीकत ये कैसे दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं। इसी तरह एक और आलम दीन के बारे में मैं पढ़ रही थी कि किसी जगह पे गए और टिकट लिया तो बहुत रश था उसमें, गाड़ी रवाना होने वाली थी, अब जाकर देखा तो अंदर चले गए, यानी रेल पे पहुंचे, टिकट लेने का वक्त नहीं मिला, कहा अंदर जाके ले लूँगा। जब अंदर चले गए एक डिब्बे में सवार हो गए, कहा टिकट चेक करने लाएगा तो मैं देख लूँगा, इनके पास टिकट ऑर्डनरी का था, ये सवार हो गए फर्स्ट क्लास में। पूरे रास्ते को टिकट चेक कर नहीं आया, मंजिल आ गई, मंजिल पर उतर कर सीधे टिकट घर पहुंचे, वहां जाकर मालूमात की, फर्स्ट क्लास और उनके टिकट के बीच का डिफरेंस क्या था प्राइस का, कहा कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ। वो बड़ा हैरान हुआ, सफ़र आप कर रहे हैं, किसी ने आपको पूछा भी नहीं, आप कर क्या रहे हैं, टिकट क्यों? उन्होंने कहा देखो मुझे टिकट चाहिए। उन्होंने कहा आप किसको दोगे, कब मुझे टिकट दो, टिकट ली वहीं फाड़ दी। कहने लगे कि मैंने जब अच्छी जगह पे सफ़र कर लिया है तो वो तो मैंने कर लिया, लिहाजा टिकट खरीद कर फाड़ दिया। ये है अल बसीर के साथ ताल्लुक का हक। ऐसे बीसियों वाक़यात आप भी जानते होंगे और पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के अल बसीर होने का ख्याल होगा ना, आप अपने मामलात में संजीदा हो जाएंगे, और अल बसीर का ध्यान ही तकवा और इबादत की बुनियाद है, उतनी फिर इबादत में भी खुशू होगा, फिर नमाज में आपका ध्यान जमेगा। ऐसे इबादत करेंगे जैसे ये आपकी आखिरी नमाज है, अल्लाह आपको देख रहा है। क्याम में सोचिए कि अल्लाह आपको देख रहा है, रुकू में सोचिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, कभी अल्लाह आपको देखे कभी आप उसको देखे, ऐसी एक नमाज नसीब हो जाए तो यकीन कीजिए कि हमारे दिल के अंदर तकवा भर जाएगा और मोहब्बत भरेगी। अल्लाह अकबर कहें तो और तरह दिल सोचे, और इसी तरह आप देखेंगे कि आप हर वक्त अपने आप को अल्लाह के सामने रखेंगे। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह के साथ इस ताल्लुक़ को पैदा करते हुए अपनी इसलाह की जाए। और याद रखिएगा कि बसारत के साथ ईमानी बसीरत भी तभी मिलती है जब हमारे मामला दुरुस्त होते हैं। फिर इस तरह अल बसीर के साथ ताल्लुक़ क्या है कि ऐसे काम ना कीजिए जो किसी देखने वाले के सामने नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के सामने आप कोई काम कर सकते हैं तो फिर बंदों से क्यों अपने आप को बचाते हैं? बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि वो तो आपको देख ही रहा। फिर आप देखिए कि बदनजरी से खुद को बचाइए, लड़के हैं तो लड़कियों को ना देखें, औरतें हैं तो मर्दों को ना देखें। फिर इसी तरह से यग़ुद्दु मिन अबसारिहिम, निगाहों को झुका कर रखिए, अपनी नज़रों को झुकाइए। रात के अंधेरों में भी, समंदरों की तारीकियों के अंदर भी जो देख लेता है वो दिल की हालतों और तबीयतों को भी देख लेता है, उसके सामने आप और मैं कैसे बचेंगे? और इसी तरह लम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या उसने ना जाना कि अल्लाह उसे खूब देख रहा है? इस आयत को हमेशा नज़रों में रखिए और फिर खुद से एक सवाल कीजिए, मेरा देखना कैसा है, मैं किस तरह देखती हूँ? क्या मैं बदनजरी तो नहीं करती, किसी को बदनिगाही से तो नहीं देखती, किसी हराम की तरफ नज़र तो नहीं उठती? फिर आप लोगों को नज़रे बद लगाने वाली नज़रों से तो नहीं ताड़ते रहते? फिर इसी तरह देखिए, दुनिया की जेबो जीनत की तरफ आंख उठा कर ना देखे। अल्लाह सूरह हिजर में कहते हैं हमने आपको सबल मसानी दे दी, यानी सूरह फातिहा, अब आप कभी लोगों की तरफ ला तमद्दन आई नहीं का इला मामत तो नबी ही, यानी दूसरों की चीज़ों को मत देखिए। और इसी तरह से याद रखिए कि अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हमारी निगाहों में हया भर दे। बाहया निगाहें झुकी हुई होती हैं, और जितना ज़्यादा आप अपने आप के अंदर देखेंगे आपको एहसास होगा कि आपका रब हकीकत में आपके साथ बहुत प्यार करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला से ये बड़ी दुआ है कि वो हमें हर तरह के फितनों से बचाए। आज लोग बड़े बड़े गैजेट बनाकर सेल फोन्स और कैमरे और इसी तरह की चीज़ें अपनी बच्चों के हाथों में देते हैं। याद रखें अपने बच्चों को इन मशीनों के हवाले ना कीजिए। हमने पासवर्ड लगा दिया, हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे तुम किधर गए थे, तुमने फेसबुक पे किसको मैसेज किया। उनको अल बसीर के देखने का एहसास दिलाइए। बहुत से लोग साहिब हिकमत होते हैं, अल्लाह ताला जिसको हिकमत अता करे उसके लिए भी ज़ाहरी चीज़ों को भी देखना आसान होता है और बातनी को भी। अपने बच्चों के लिए भी यही दुआएं किया करें कि अल्लाह इनके अंदर की आंख खोल दे, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर की आंख खुली थी ना। फिर इस तरह हमेशा ये याद रखिए कि वो अल बसीर आंखों की खयानत को भी देखता है। मैंने अपनी आंखों को पाक रखना है, अपनी आंखों को बहुत बना संवार के बाहर मत जाएं। बाज़ लोग निकाब करते हैं लेकिन आंखें खूब सजी संवरी होती हैं, बाज़ लोग पूरा हिजाब करके चले, चेहरा ना भी छुपाएं तो फुल मेकअप में आंखों पर इतने लंबी लंबी निशान लगा कर फिरते हैं। ना कीजिए, खयानत से बचिए। किसी गैर महरम को किसी ऐसी निगाह से देखना जिसमें खयानत का शायबा हो, ये भी अल बसीर की निगाहों में है। फिर जो कुछ सीने छुपाते हैं वो सब जानते हैं, इसलिए अपनी सोचों की हिफाजत कीजिए, दिल को साफ रखिए। अल्लाह दिल को देखता है, और अल्लाह ताला की सिफत की मार्फत से इंसान गुनाहों से रुकता है। असल बात यह है कि तकवा की असल यही है, और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया और कुरान की कुछ आयात से पता चलता है कुछ लोग ऐसे हैं ला यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ नहीं देखेगा। उनमें एक वो लोग हैं कि जो माँ बाप के नाफरमान हैं। फिर ज़रा बूढ़ा जानी, शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला, तकब्बुर के साथ वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान होती है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी आंखों की भी हिफाज़त करे और ईमान की भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।